लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि यीशु का अनुसरण करते हुए अफ्रीका के ख्रिस्तीय धर्मानुयायी पुनर्मिलन, न्याय और शांति के साक्षी बने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। विश्व मंडल के प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन। याकूब के ईश्वर, ध्यान देने की कृपा कर। ईश्वर हमारे रक्षक, हमारी सुधि ले। अपने अभिषिक्त पर दया दृष्टि कर। हजार दिनों तक कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 84वें भजन के 9वें और 10वें पदों के शब्द। विगत सप्ताह हमने इन्हीं पदों की व्याख्या से पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम शुरू किया था। इस तथ्य पर हम गौर कर चुके हैं कि स्तोत्र ग्रंथ का 84वां भजन तीर्थ यात्राओं के दौरान गाया जाने वाला गीत है। इसमें जीवन दान के लिए ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और ईश्वर की स्तुति निहित है। सीयों पर्वत पर जेरूसलम के मंदिर में पहुंचने के बाद तीर्थयात्री अपने लिए अथवा अपने परिजनों के लिए विनती नहीं करते, अपितु उनके राजा और शासकों के लिए विनती करते हैं। राजा लोगों का रक्षक होता है तथा ईश्वर द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति, क्योंकि ईश्वर ने उसे मनुष्यों के बीच अपने कार्यों को संपादित करना चाहा था। इस स्थल पर हमने आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित कराया था कि नवीन व्यवस्थान के प्रथम शब्दों में येसु ख्रीस्त को दाऊद के पुत्र अथवा दाऊद के वंशज निरूपित किया गया है। दाऊद राजा और ईश्वर द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति था। तदुपरांत भजन के अंतिम 3 पदों में तीर्थयात्री प्रभु ईश्वर में अपने विश्वास की अभिव्यक्ति कर कहते हैं कि उन्हें केवल ईश्वर पर ही भरोसा है। कहते हैं, दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है, क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता और हमें कृपा एवं गौरव प्रदान करता है। वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। विश्व मंडल के प्रभु, धन्य है वह जो तुझ पर भरोसा रखता है। इन पदों में प्रांगण, शिविर और साथ ही मंदिर की सीढ़ियां आदि शब्दावली का उपयोग कर भजनकार ने इस तथ्य को प्रकाशित करना चाहा है कि जीवन एक अनवरत जारी तीर्थयात्रा है और मनुष्य की इस तीर्थयात्रा में उसकी ढाल, उसके रक्षक, उसके गढ़ और उसके शरण स्थल बनते हैं केवल प्रभु ईश्वर। 84वें भजन के शब्दों में, क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता और हमें कृपा एवं गौरव प्रदान करता है, वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। आगे 84वें भजन के अंतिम पद में ईश्वर के प्रति आश्चर्य और आनंद भरी एक अभिव्यक्ति मिलती है। इसमें प्रभु पर अपने विश्वास को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस बात को रेखांकित किया गया है कि यदि हम मानव प्राणी, स्त्री और पुरुष प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से हमारे हृदय सुख और आनंद की अनुभूति प्राप्त करेंगे। विश्वमंडल के प्रभु, धन्य है वह जो तुझ पर भरोसा रखता है। यदि स्तोत्र ग्रंथ के 85वें भजन पर दृष्टिपात करें तो यह भजन शांति और न्याय की बहाली के लिए प्रार्थना है। इस भजन में भी प्रार्थी प्रभु ईश्वर के अनुपम और दयालु कार्यों की याद करता तथा उनसे अपनी मुक्ति की आर्थ याचना करता है। 85वें भजन के प्रथम 5 पद इस प्रकार हैं: प्रभु, तूने अपने देश पर कृपा दृष्टि की, तूने याकूब को निर्वासन से वापस बुलाया, तूने अपनी प्रजा के अपराध क्षमा किए, तूने उसके सभी पापों को ढक दिया, तेरा रोष शांत हो गया, तेरी क्रोधाग्नि बुझ गई। हमारे मुक्तिदाता प्रभु, हमारा उद्धार कर, हम पर से अपना क्रोध दूर कर। श्रोताओं, स्तोत्र ग्रंथ के 85वें भजन को कोराह के पुत्रों का गीत भी कहा गया है, जो इब्रानी बाइबल के अनुसार मूसा और हारून के रिश्तेदार थे। इस भजन के प्रथम पद हमें बाबुल से सियों तक की लंबी तीर्थ यात्रा का स्मरण दिलाते हैं, जो इसराइल के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। 84वें भजन में हमने प्रभु ईश्वर की क्षमा और इसे नव वर्ष के महापर्व की आशीष रूप में ग्रहण करने की क्रिया को संपादित होते देखा, जबकि 85वें भजन में हम ईश्वर के रचनात्मक प्रेम से परिचित होते हैं। ईश्वर ने याकूब को निर्वासन से वापस बुलाकर इसराइल के पुनर्वास को मूर्त रूप प्रदान किया था। प्रभु ने अपने लोगों को आश्वस्त किया, उन्होंने उन्हें सांत्वना दी, उन्हें निर्वासन से घर वापस बुलाया। इतना ही नहीं, अपनी प्रजा के प्रति ईश्वर का क्रोध समाप्त हो गया था। श्रोताओं, 85वें भजन में प्रार्थी प्रश्न करते हैं कि जब प्रभु की क्रोधाग्नि बुझ चुकी थी, तब क्यों उन्हें महसूस हुआ कि प्रभु की कृपा से वे अब तक वंचित थे, कि प्रभु का रोष, उनका कोप अब भी बना हुआ था। इसलिए वे प्रार्थना में आगे के पदों में कहते हैं, क्या तू सदा हमसे अप्रसन्न रहेगा? क्या तू पीढ़ी दर पीढ़ी अपना क्रोध बनाए रखेगा? क्या तू लौट कर हमें नवजीवन नहीं प्रदान करेगा, जिससे तेरी प्रजा तुझमें आनंद मनाए? श्रोताओ, बाइबल धर्म ग्रंथ में निहित एज्रा के ग्रंथ में हम फारस के राजा द्वारा ईसा पूर्व 538वें वर्ष में इसराइलियों के वापस घर लौटने की राज आज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। फारस के राजा ने समस्त निर्वासित यहूदियों को अपने घर यूदा लौटने की अनुमति प्रदान कर दी थी और इस वापसी यात्रा में लोगों को अनेकानेक कष्ट भोगने पड़े थे, किंतु हर पग पर उन्हें ईश्वर की सहायता, उनकी रक्षा का अनुभव प्राप्त हुआ था। इसी के संदर्भ में 85वें भजन के प्रार्थी असमंजस में पड़े हैं कि प्रभु का क्रोध उन पर अब तक क्यों बरकरार था। वे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके पास पुनः लौटें और उन्हें नव जीवन प्रदान करें, जिससे ईश प्रजा प्रभु में आनंद मना सके।
हे ईश्वर तेरी दया स्वर्ग तक छाई, हे ईश्वर तेरी दया स्वर्ग तक छाई, है तेरी निष्ठा मेघों पर लहराई, हे ईश्वर तेरी दया स्वर्ग तक छाई। पावन गिरिसा न्याय अटल है तेरा, पावन गिरिसा न्याय अटल है तेरा, गहरे सागर सा निर्णय है तेरा, गहरे सागर सा निर्णय है तेरा, प्रभु मनुज और पशुओं का है त्राता, हे ईश्वर तेरा प्रेम अमोल सुहाता, हे ईश्वर तेरी दया स्वर्ग तक छाई, है तेरी निष्ठा मेघों पर लहराई, हे ईश्वर तेरी दया स्वर्ग तक छाई। इसीलिए इस जग के मानव सारे तब पंखों में अपनी शरण निहारे, तेरे घर की अतुल तृप्ति वे पाते, आनंद स्रोत से अपनी प्यास बुझाते, हे ईश्वर तेरी दया स्वर्ग तक छाई, है तेरी निष्ठा मेघों पर लहराई, हे ईश्वर तेरी दया स्वर्ग तक छाई।